भारती, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ये पहला राजयोगा का सेशन है। आज का सेशन का टॉपिक है डिस्कवर हीरो विदिन, और हमारे समक्ष है इंदिरा दीदी जी। हम सब करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान पर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 25 वर्ष से अधिक आप ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। इस हेडक्वार्टर में आप राजयोग शिविर का कोऑर्डिनेशन करते हैं आदरणीय शिरू दीदी के साथ। आपने देश विदेश की भी यात्रा कर अनेक आत्माओं को आपके अनुभवों से लाभान्वित किया है। आज हमारे समक्ष इंदिरा दीदी जी डिस्कवर द हीरो विदिन के ज्ञान अनुभव रखेंगे। आदरणीय इंदिरा दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। तो 5 दिवसीय राजयोग शिविर का आज का प्रथम प्रातःकालीन सत्र है, और बहुत ही सुंदर विषय है इसका, डिस्कवरिंग द हीरो विदिन। अंतर जगत के हीरो की खोज, अंतर जगत के हीरो की पहचान, अंतर जगत के हीरो का परिचय। सवाल उठता है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? तो जैसे कहा, शिविर का जो ओवरऑल थीम है वो है लीडिंग अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ, अर्थात जिंदगी खुशनुमा बनाए, जिंदगी आनंद से भरी बनाते हुए जिए। तो हर व्यक्ति का ये लक्ष्य होता है, मेरी जिंदगी खुशनुमा हो, मेरी जिंदगी आनंद से भरी हो। न सिर्फ ये लक्ष्य होता है, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुबह आंख खुलती है और रात को आंख बंद होती है। आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक हम अथक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आ जाता है। क्या लेकिन आता है? जितना ही लक्ष्य सुंदर है, जितना ही उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए रात दिन मेहनत है, उतना ही लक्ष्य के करीब जाने के बजाय हम लक्ष्य के दूर जा रहे हैं। है ये सत्य? क्यों? रुकना पड़ेगा ना, अपने आप से पूछना पड़ेगा ना। चलती दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ पल निकालने होंगे, आखिर भी ऐसा क्यों? लक्ष्य भी सुंदर, प्रयास भी अथक, पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, क्यों? और सचमुच आप सभी बधाई के पात्र हैं, जो चलती भागती दौड़ती जिंदगी से अपना कुछ अमूल्य समय निकालकर इन बातों को समझने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आप आ पहुंचे हैं, तो इन बातों को हमें समझना है कि क्यों क्यों लक्ष्य के करीब नहीं जा रहे। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट पर जाना था, टैक्सी वाले को पूछा कितना दूर है एयरपोर्ट, कितना समय लगेगा पहुंचने में, कितना चार्ज करोगे। टैक्सी वाला कहता है सर 100 ले लेंगे, पैदल जाएंगे तो आपको 2 घंटे तो लग जाएंगे। वो भाई सोचता है मेरे पास सामान तो इतना कुछ है नहीं, तो क्यों न पैदल चल ले, क्योंकि मेरे पास समय भी काफी है, तो दोनों काम हो जाएंगे, वॉकिंग भी हो जाएगी, पैसों की बचत भी हो जाएगी। ये सोचकर पैदल चल पड़ता है, लेकिन आखिर 2 घंटे है ना। चलते चलते एक समय आता है जब वो थकान महसूस करता है, जब उसके पैर आगे बढ़ने को जवाब दे देते हैं, तो सोचता है टैक्सी कर ली जाए। पर सामने देखता है तो दूर दूर तक कहीं भी उसको कोई टैक्सी वाला आता हुआ नजर नहीं आता है, तो सोचता है पीछे ही मुड़ के देख ले। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वही टैक्सी वाला आ रहा होता है, और जैसे ही करीब आता है फिर उसको कहता है भाई साहब एयरपोर्ट जाना है, कितना लोगे। और वो क्या करता है टैक्सी वाला, एकदम डबल बोल देता है, जो पहले बोला था उसका डबल। ये वैसा ही थक गया था और ऊपर से डबल सुनकर आवेश में आ गया। और जैसे आवेश में हर कोई बोलता है तुम टैक्सी वाले बिजनेस करते हो या चीटिंग करते हो या लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो, कुछ 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 मन से निकलता रहता है और उसके ऊपर बम्बार्डिंग चालू। टैक्सी वाला अपनी जगह पर सही था, वो तो अपने आप को शांत चित्त बनाए रखा, सुनता रहा सुनता रहा। जब वो चुप हुआ तब टैक्सी वाला कहता है भाई साहब हम बिजनेस करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं, तो फिर डबल क्यों कह रहे हो। मैं इतनी दूरी तय करके आ गया हूँ फिर भी डबल रेट बोल रहे हो, ये चीटिंग नहीं है तो क्या है। कि तो भाई साहब ये चीटिंग नहीं है, आपने बेशक दूरी तय की है लेकिन एयरपोर्ट की विपरीत दिशा में तय की है। अब तो आप एयरपोर्ट से पहले से भी ज्यादा दूर हो गए हैं, और अब तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि समय पर पहुंचकर फ्लाइट को पकड़ लो, टैक्सी करनी ही होगी आपको, वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो कहीं हम भी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो कहा ना लक्ष्य तो बहुत सुंदर और उसके लिए प्रयास भी बहुत अथक, लेकिन लक्ष्य के करीब न जाकर लक्ष्य के दूर जा रहे हैं। तब कहा हमें रुकना पड़ेगा, अपने आप से विचार विमर्श करना पड़ेगा, सोचना होगा समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही 2 अस्तित्वों के योग से बना है। एक है भौतिक अस्तित्व जिसके अंतर्गत ये शरीर है, दूसरा है आध्यात्मिक अस्तित्व जिसके अंदर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। है, या यूं कहे बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों के योग से मनुष्य जीवन का अस्तित्व है। मनुष्य जीवन के ये दो पहलू है। तो जैसे तराजू के दोनों पलड़ों में समान समान हो तो तराजू न्याय दे सकता है ना, लेकिन तराजू के एक पलड़े में डालते ही जाओ और दूसरे पलड़े में कुछ भी ध्यान नहीं है कि इधर भी कुछ डालना है, तो क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इन द बिगिनिंग ये इम्बैलेंस थोड़ा सा है, लेकिन जैसे जैसे डालते जा रहे हैं इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है, और उसका नतीजा इतना बढ़ गया कि वो पलड़ा ही नीचे गिर गया और उस पलड़े में जो रखा था वो भी बिखर गया। तो इतनी मेहनत की थी चीजों को जोड़ने के लिए, वही काम नहीं आई फिर। तो क्या कहते हैं, इवन डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट रहनी चाहिए। बैलेंस का महत्व है, जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग है। क्यों कहते हैं? इसीलिए बैलेंस है तो तराजू बराबर न्याय दे देता और हमारा काम हो जाता, लेकिन बैलेंस ही नहीं है ना, तो क्या हुआ? अपोजिट हो गया। तो बैलेंस का जीवन में बहुत महत्व है, जहां बैलेंस वहां ब्लेसिंग, और जहां ब्लेसिंग वहां ब्लिस। और ब्लिस माना क्या? आनंद, खुशी। क्यों नहीं है हमारे जीवन में खुशियां, जबकि लक्ष्य है वही, क्योंकि जीवन में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस हम क्रिएट करते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बाह्य जगत की बातों को छोड़ दो, नहीं, वो भी जरूरी है, वरना अंतर जगत में से प्रवेश करोगे और बाह्य जगत कर अगेन इट इज इम्बैलेंस, ये फिर से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, और चूंकि बाह्य जगत की तरफ तो फोकस है हमें, हम जानते हैं वो सब कुछ बहुत बेटर रीति से, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा फोकस किधर नहीं है? अंतर जगत में नहीं है, और उसी को आज हमें समझना है। तभी कहा डिस्कवरिंग द हीरो विद इन। समझ में आई इंपॉर्टेंस टॉपिक के? तो चलिए अब डिस्कवर करते हैं इस हीरो को। तो जैसे कहा मनुष्य जीवन का अस्तित्व दो बातों से बना है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक है शरीर, आध्यात्मिक है शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको नाम दिया आत्मा। ये दो अलग अलग है, इसको थोड़ा समझ ले। बच्चे का घर में जन्म होता है, हम चारों तरफ खुशखबरी फैला देते हैं, घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन ये खुशखबरी फैलाने से कुछ मास पहले की खुशखबरी क्या होती है? बच्चा गर्भ में पल रहा है। इस खुशखबरी से भी कुछ मास पहले की न्यूज क्या होती है? गर्भ ठहरा है। बच्चा ठहरा है नहीं बोला जाता है, गर्भ ठहरा है बोला जाता है। और वो गर्भ ठहरना माना स्त्री पुरुष के बीच आपस में मिले, मास का एक पिंड तैयार हुआ और एक बार वो गर्भ के अंदर मांस का पिंड तैयार क्या हुआ, उसका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, विभाजन 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 होते 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 मनुष्य शिशु आकृति तैयार हो गई। और जब ये आकृति तैयार हो गई, वो शरीर तैयार हो गया, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा उसमें प्रवेश करती है। इतनी सारी माताएं यहाँ बैठी है अनुभव कि तभी अंदर का बच्चा हलचल शुरू करता है, उसके पहले नहीं, क्योंकि शरीर तो क्या है, जड़ है, आत्मा चैतन्य है, वो चैतन्य शक्ति उसमें प्रवेश करती है और मूवमेंट हलचल आरंभ होती है। तो जन्म के प्रसंग से भी बात बहुत स्पष्ट होती है, आत्मा शरीर दो अलग अलग अस्तित्व है। मृत्यु के प्रसंग को भी अगर देख ले तो जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, फलाने ने अपना देह त्याग किया और अब उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार, उसका अंतिम संस्कार नहीं, जिसने देह त्याग किया है उसका अंतिम संस्कार नहीं, उसके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार फलाने टाइम पर फलानी जगह पर मुकर्रर किया गया है। और फिर उस आत्मा की शांति के लिए फलाने टाइम पर फलाने स्थान पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। क्लियर है, दो काम कर रहे हैं हम, शरीर के लिए अलग काम, आत्मा के लिए अलग काम। शरीर अपने आप में अकेला है, कोई वैल्यू नहीं, आत्मा अपने आप में अकेली है, कोई जीवन नहीं। जब दोनों मिलते हैं तो मनुष्य जीवन अस्तित्व में आता है। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है, जब तक उसका अंतिम संस्कार किया जाए, जब तक वो डेड बॉडी हमारे पास है, हम एक दीवा जला देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन माना दोनों, अभी टेम्पररी आत्मा चली गई है लेकिन बॉडी हमारे पास है, तो टेम्पररी हम एक दीवा जला देते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के साथ वो दीवा भी पूरा हो जाता है। तो बहुत क्लियर है ये बात, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन सारा जीवन हमारा फोकस किधर है, किधर है, तो इम्बैलेंस होगा नहीं होगा, सारा इम्बैलेंस की रिजल्ट है आज जो हमारी जीवन है। बस इस इम्बैलेंस को बैलेंस करते चले जाओ, जीवन बहुत सुंदर, जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, अभी तक ये आत्मा शब्द हम सुनते आए थे, लेकिन सुनने तक कोई आत्मा नहीं घर में आई है, वहां तक कोई आत्मा घर से चली गई, वहां तक आई और चली गई, बीच का जो पीरियड है उसको जीना था ना आत्मा के रूप में, वो आत्मा के रूप में नहीं जिया। क्यों नहीं जी पाए, क्योंकि उसकी डेप्थ नहीं पता ज्यादा। वरना सदियों से हमारे संत महान आत्माएं महापुरुष यही बात कहते आए हैं, हे मानव, तुझे अगर जीवन में सच्ची सुख शांति चाहिए तो तू अपने भीतर झांक। पर चूंकि भीतर झांकने की विधि नहीं बताई, तो झांकना कहां से होगा। और फिर हमने ये भी अर्थ लगा दिया, क्योंकि बाह्य दुनिया का आकर्षण कम थोड़ी है, उस आकर्षण में हमने ये भी अर्थ लगा दिया अंदर झांकना, ये भी कोई उम्र है अंदर झांकने की। अभी तो हम बाल है, युवा है, अभी तो जिंदगी के मजे लूटने हैं, ये सब काम तो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तब करने होते हैं, जब आंख जवाब दे दे, जब कान जवाब दे दे, जब शरीर जवाब दे दे, इतना ही नहीं जब अपने भी अपने नहीं रह जाए, ये काम तब करना होता है, अभी थोड़ी करना होता है। और दूसरी क्या मान्यता बना रखी, अंदर झांकना। अपन तो गृहस्थी है ना, अपन गृहस्थियों का काम नहीं है ये, किसका काम है ये, सन्यासियों का काम है, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो घर बार छोड़ते हैं, ये तो उनका काम है, अपन तो गृहस्थी है, अपने को तो गृहस्थी जीना है। गीता में भी भगवान ने कहा है गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है ना, अपनी मान्यता को सपोर्ट दे देते हो और अंदर झांकना कैंसल, क्योंकि बाह्य जगत का आकर्षण बहुत खींच रहा है और उसी ने हमको रोक दिया, अंदर जाने की जिज्ञासा ही हमारी खत्म हो गई। चलो किसी ने विधि ना बताई, एटलीस्ट जिज्ञासा तो होती कि अंदर कैसे झांके। तो अंदर झांकना है और ये सिवाय परमात्मा के कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अब परमात्मा, जैसे कहा कि आप परमात्मा अवतरण भूमि पर आए हैं, तो परमात्मा धरती पर अवतरित होकर जीवन के ये सारे राज खोल रहे हैं जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो पहली बात, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, शरीर एक अगर गाड़ी है तो आत्मा उसकी ड्राइवर है। ड्राइवर कहेगा ना ये मेरी गाड़ी है, या गाड़ी कहेगी मैं गाड़ी हूं और ये मेरा ड्राइवर है, कौन कहेगा? वो तो जड़ है ना, वो कैसे बोलेगी, है ना? तो मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, ये कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। लेकिन आज दिन तक हमने क्या किया था, दर्पण के सामने जाते हैं, इसकी तस्वीर वहां बनती है और उसको देखकर हम कहते हैं मैं हूं, कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं हूं कहते हैं ना, वहां दिखता है ना मैं। और अगर उंगली कट गई तो फिर क्या कहेंगे, मेरी उंगली कट गई, अभी अभी दर्पण के सामने इसको कहा मैं, और अभी अभी उंगली कट गई तो कहा मेरी उंगली। अपनी ही एक मान्यता को दूसरी मान्यता से कट कर रहे कि नहीं कर रहे, दिखता है हम कहां कहां गलती कर रहे हैं। दो विपरीत दिशा की मान्यताओं को एक साथ लेके जी रहे हैं और इसीलिए ये सारा हाल हमारा हुआ है। तो फिक्स करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। आज दिन तक मैंने इसको मैं भी बोला, आज दिन तक मैंने इसको मेरा भी बोला, इन दोनों में से सत्य क्या है, ये मैं है या ये मेरा है। ये 5 फुट लंबा चौड़ा जो शरीर दिखता है ये मेरा शरीर है, और जो बोल रही है मेरा शरीर है वो मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो एक रथ के समान है, आत्मा उस पर सवार रथी रथवान है। यही कारण है डेड बॉडी जब किसी की उठाते हैं तो क्या कहते हैं, अर्थी जा रही है फलाने की, अर्थात वो रथ जिसमें अभी रथी सवार नहीं है, रथवान उसमें से निकल गया है। ये शरीर एक मकान है, तो आत्मा उस मकान में, उस मकान की मालिक है। तो बहुत सारी चीजों से उसका कंपैरिजन करके हम समझ सकते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे ड्राइवर और गाड़ी दोनों हो तो यात्रा पर चलाया जा सकते हैं, लेकिन यात्रा को एंजॉय करने के लिए, यात्रा के डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि जितना ही गाड़ी का मेंटेनेंस का ख्याल किया जाए, उतना ही ड्राइवर के सस्टेनेंस का भी ख्याल किया जाए। दोनों में से किसी एक को भी निग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, चाहे फिर आप ड्राइवर को नजरअंदाज करो चाहे गाड़ी को नजरअंदाज करो, दोनों ही केस में यात्रा को एंजॉय नहीं करेंगे। एंजॉय करना तो छोड़ो, लेने के देने पड़ जाएंगे और डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंचेंगे। यही तो हमारा हाल हुआ है। इसका मेंटेनेंस बहुत और इसका सस्टेनेंस, आत्मा का सस्टेनेंस जीरो। क्यों? पता ही नहीं ना कि आत्मा का सस्टेनेंस भी करना होता है। हमने सोच लिया इसको ही बहुत अच्छी से रख लिया, इसको ही घुमा लिया, इसको ही सुख सुविधाएं प्रदान कर दी, सब कुछ हो गया। नहीं, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल पंप पे जाके भरवा लेते हैं, लेकिन ड्राइवर भी तंदुरुस्त चाहिए, खाया पिया हुआ चाहिए, नहीं तो थकेगा वो भी फटाफट चलेगा, उसको एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अभी भोजन है ही नहीं, चल मैं भी पेट्रोल पी लेता हूँ, कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। इसका अपोजिट, घर में मैंने खाना खा लिया है, दाल चावल, लेकिन अभी गाड़ी से यात्रा करना है, कोई पेट्रोल पंप खुला ही नहीं है, तो चलो उसमें दाल चावल डाल देते हैं, चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। दोनों की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है। तो बेशक हमारे जीवन की जरूरतों की अगर हम लिस्ट बनाए तो दो प्रकार की बनेगी। एक लिस्ट होगी, मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, मुझे मेज चाहिए, पलंग चाहिए, मुझे रेडियो चाहिए, टीवी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, आदि 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 भौतिक वस्तुएं। लेकिन दूसरी लिस्ट क्या है? मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे सच्ची समझ चाहिए। है ये रिक्वायरमेंट या नहीं है? तो हमारी गलती क्या हुई है, हमने सोचा जैसे जैसे ये लिस्ट में पूरी करता चला जाऊंगा ना, तो ये वाले लिस्ट तो मेरी अपने आप पूरी हो जाएगी। ये मान्यता को लेकर हमने पूरा फोकस इस लिस्ट पर किया, लेकिन अनुभव ने क्या सिखाया? अनुभव ने क्या सिखाया? जितनी जितनी ये लिस्ट पूरी होती है ना, उतनी ये पूरी तो नहीं होती है, और ही क्या होता है, उसका अपोजिट मेरे जीवन में आ जाता है। है ये अनुभव सबका? लोग कहते बहन जी पहले इतने सुख सुविधा के साधन नहीं थे ना, फिर भी घर में शांति थी, फिर भी आपस में थोड़ा बहुत प्रेम प्यार हुआ करता था, लेकिन जितनी ही भौतिक उपलब्धियां बढ़ गई है उतनी ही शांति पहले से भी कम हो गई है। ये सत्य? अर्थात आज इस बिलीफ सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा। ये लिस्ट से ये लिस्ट पूरी नहीं होती है। ये लिस्ट पूरा करने का तरीका अपना है, ये लिस्ट पूरा करने का तरीका अपना है। ये लिस्ट बाह्य जगत से पूरी होती है, ये लिस्ट अंतर जगत में झांकने से पूरी होती है। क्योंकि समझ नहीं थी ना, तो हमने सोचा इससे ही ये पूरी होगी, इसलिए बहुत कुछ खरीद किए जा रहे हैं, बहुत कुछ नए नए मकान बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ बिल्डिंगें बनाई जा रही है, बहुत कुछ टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ घर को डेकोरेट किया जा रहा है, हर सुख सुविधा से घर को संपन्न किया जा रहा है, या तो फिर सामने से अपेक्षा की जा रही है। आप मेरे से प्यार से क्यों नहीं बोलते हो? आप शांति से रहो ना, खुद तो शांति से नहीं रह रहे हैं, दूसरे को बोलते आप शांति से रहो ना, खुद तो प्यार नहीं दे पा रहे, दूसरे को कहते प्यार से बात करो ना, तो क्या हुआ, मांग रहे हैं? तो या तो इकट्ठी करते गए चीजें, या तो डिग्रियों को बढ़ा दिया, पोजीशन प्रमोशन करने की इसमें लग गए, या तो पिकनिक करने चले गए, 5-स्टार होटलों का आनंद लेने चले गए, और या तो फिर एक दूसरे से अपेक्षाएं की। और वह ये सब नहीं बना, हे भगवान मैं और कुछ नहीं मांगता हूं आपसे, सिर्फ मुझे शांति दे दो। फिर उधर मांगना शुरू किया, हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी सब कृपा है, सिर्फ मुझे सुख चैन दे दो। और क्या मांगा, इतनी शक्ति देना हमें दाता, शक्ति मांगी। और क्या मांगा, और क्या मांगा, आनंद खुशी मांगी। तू सचिदानंद है, सत्चित आनंद है, हमारे जीवन को खुशियों से भर दो। और क्या मांगा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे हैं। और क्या मांगा, और क्या मांगा, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे मृत्यु के भय से निकाल अमरत्व की ओर ले चल। यही तो मांग रहे थे। पता है ये सब क्यों मांगते हैं हम, ये सब क्यों मांग रहे हैं हम, और कुछ क्यों नहीं मांग रहे फिर? क्योंकि यही सब आत्मा का मूल स्वभाव है, आत्मा की कोर वैल्यूज हैं, और इसलिए हम ये सब या तो आपस में मांग रहे हैं, या भगवान से मांग रहे हैं, या चीजें इकट्ठी कर करके, या वहां जाकर वहां जाकर वहां जाकर उससे मिलकर ये सब मिल जाएगा, ये सोच रहे हैं। लेकिन सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं आया, तब कहा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम आत्मा है, आज ये मान्यता को तय करना होगा। हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो एक वस्त्र है, और इस वस्त्र को धारण कर पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा, हीरो एक्टर। हीरो एक्टर की क्या विशेषता होती है? हीरो एक्टर की पहली विशेषता होती है वो चमकता है। तो आत्मा कैसी है? एक चमकती हुई ज्योति है। कल ही कहा ना, अगर अंदर जलता हुआ बल्ब हाई पावर का नहीं है तो बाहर प्रकाश थोड़ी आएगा उसका, लेकिन अंदर जलता हुआ बल्ब बहुत ज्यादा प्रकाशित है, कितने ही मोटे मोटे पर्दे क्यों नहीं लगे हो, उसको भी भेद कर प्रकाश आएगा। एक्सरे मशीन कैसे चित्र निकालती है बॉडी के अंदर का, इतने मोटी मोटी कर्टन है चमड़ी, लेकिन अंदर चले जाती है ना वो लाइट, खींच के लाती है ना दृश्य वहां का। ये ताकत होती है पावरफुल लाइट में। तो ये हीरो कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, ये चमकती हुई ज्योति है। तभी कहा कोई शरीर छोड़ता है, क्या कहते हैं, ज्योति चली गई, दीवा बुझ गया। तो वैसे भी देखा जाए हीरो किसको कहा जाता है पता है, दुनिया के हिसाब से भी, जो अच्छा करता है, जो अच्छाइयों से भरा होता है लेकिन बुराइयों में जीरो होता है, उसको कहते हैं हीरो। तो ये आत्मा हीरो क्या है, जीरो है, मतलब रूप में भी जीरो है और बुराइयों में भी जीरो है। ये है आत्मा, एक ज्योति बिंदु, प्रकाश का पुंज, एक चैतन्य शक्ति, जिसके लिए ही कहा जाता है भ्रुकुटि में चमकता है एक अजब सितारा। ये किसकी तरफ इशारा है, आत्मा की तरफ। अर्थात दोनों बातें पता चल गई, सितारा कौन है, आत्मा है, और वो शरीर में कहाँ है, तो कहा भ्रुकुटि में है। चमक तो यहीं से फैलेगी ना, चेहरे से ही तो चमक फैलेगी ना, और कहाँ से फैलेगी। आप किसी व्यक्ति को भी देखो तो उसका हाथ चमकता हुआ देखोगे या उसका फेस चमकता हुआ देखोगे, फेस चमकता हुआ देखोगे ना, तो आत्मा यही विराजमान होगी ना। तभी तो देखो यही तिलक किया जाता है, और तिलक को एक शब्द दिया जाता है टीका, जिसका असली भाव है, हम कहते कोई भी शुभ कार्य करना हो ना पहले टीका लगा लो तो कार्य शुभ हो जाएगा। उसका भाव क्या था असल में, टीका लगा लो मतलब इस स्थान पर जो आत्मा विराजमान है उस पर अपना ध्यान टिका लो, अर्थात उसमें जो अच्छाइयां है उस पर ध्यान टिका लो, अर्थात उस अच्छाइयों के वाइब्रेशंस फैलाते चलो, कार्य शुभ शुभ हो ही जाएगा ना। लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर टीका भी लगाते हैं और अंदर कुछ 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 निगेटिव सोचते रहते हैं और निगेटिव वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, और फिर कहते काम तो शुभ हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा, सही विधि कहाँ अपनाई थी। तो आत्मा ज्योति बिंदु प्रकाश का पुंज यहाँ पर विराजमान, अजब सितारा है ये इस भौतिक जगत की लाइट नहीं है, ये आध्यात्मिक लाइट है, आध्यात्मिक प्रकाश है, जिसकी विशेषता क्या है, ये प्रकाश का पुंज, ये दिव्य सितारा, ये चैतन्य शक्ति, ये आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर माना भेंट कर रहे शरीर से, जैसे शरीर जड़जड़ी भूत होता है बाल्यकाल से, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जड़जड़ी भूत होता है ना। अब देख लो अपने ही जीवन को, हम बाल्यकाल में कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, जड़जड़ी भूत की ओर बढ़ रहे। तो शरीर जैसे जड़जड़ी भूत होता है, आत्मा ऐसे जड़जड़ी भूत नहीं होती है। इस शरीर को चूंकि बना ही प्रकृति के पांच तत्वों से है, तो वो ही प्रकृति के पांच तत्व इसको खत्म भी कर सकते हैं। अग्नि से ये जल सकता है, पानी से ये भीग सकता है, हवा से ये सूख सकता है, शस्त्रों से ये कट सकता है, परंतु चूंकि आत्मा है ही पराभौतिक शक्ति, भौतिक नहीं है, पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसलिए जैसे शरीर पर पांच तत्वों का प्रभाव पड़ता है, उस प्रकार का प्रभाव आत्मा को नहीं पड़ता, अर्थात वो शस्त्र से काटी नहीं जा सकती है, जल से गीली नहीं की जा सकती है, हवा से सुखाई नहीं जा सकती है और अग्नि से जलाई नहीं जा सकती है। वो अमर है और अविनाशी। ये शरीर भल इसको अग्नि न भी जलाए, लेकिन आत्मा जिस दिन निकल जाएगी तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा, परंतु आत्मा तो शरीर के विनाश होने के बाद भी उसका अस्तित्व कायम रहेगा। तभी तो देखो, जब भी किसी महान विभूतियों की अंतिम संस्कार होता है तो कमेंटेटर अपनी कमेंट्री में क्या कर रहा होता है, क्या बोल रहा होता है, पंच तत्वों का बना शरीर पंच तत्वों में विलीन होने जा रहा है, आत्मा तो कब से आगे की यात्रा पर निकल चुकी है, क्योंकि वो अविनाशी है। वो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, लेकिन शरीर आज है कल नहीं। इसके लिए क्या कहते हैं, माटी का बना पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। काहे तू इसका गर्व करे रे, पर हम इसका ही तो गर्व कर रहे हैं, इसका ही तो गर्व कर रहे हैं, हर बात को लेकर, देह के रंग को लेकर, रूप को लेकर, आयु को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, नेशनलिटी को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, संबंधों को लेकर, इसके ही गर्व में तो जी रहे हैं। रूप को लेकर, मैं सुंदर हूँ, आप ऐसे हो। रंग को लेकर, गोरा काला। आयु को लेकर, युवा बूढ़ा। धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम। जाति को लेकर, फलाना फलाना। नेशनलिटी को लेकर, अमेरिकन अफ्रीकन इंडियन। कर रहे हैं ऐसा, मैं ये हूँ। संबंधों को लेकर, मैं पति, तुम मेरी पत्नी हो, ज्यादा नहीं बोलना तुम, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जो बोलता हूँ करो, ज्यादा मत मुंह खोलो। संबंधों को लेकर, पोजीशन को लेकर, जानते हो किसके सामने बोल रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारी क्या औकात जो मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। प्रोफेशन को लेकर, संबंधों को लेकर, भाषाओं को लेकर, जाति को लेकर, रंग रूप को लेकर, आयु को लेकर गर्व किए जा रहे, गर्व किए जा रहे, जबकि ये एक दिन क्या हो जाएगा, और ये सब अर्जित किया हुआ है, ये सब अर्जित है। अर्जित हमेशा पता होता है, जो आज मिला है वो कल छूट भी सकता है। जो छूटने वाला है, जो मिला हुआ है, उसका गर्व कर करके हम जीवन जी रहे हैं। और फिर कहते हैं, जीवन में सच्ची सुख शांति क्यों नहीं है। कहा था ना, असत्य से सत्य की ओर ले चल। ये शरीर असत्य है ना, सत्य और असत्य की क्या डेफिनेशन, जो सदा कायम रहे वो सत्य, जो सदा कायम ना रहे वो सत्य। तो ये कायम तो रहता ही नहीं है। आज अगर मैं कहूं कि मैं इंजीनियर हूं, कितने समय तक, लॉन्ग लाइफ, एक दिन आएगा क्या बोलेंगे, एक्स इंजीनियर। आज मैं कह दूं मैं युवा हूं, एक दिन आएगा कहेंगे बूढ़ी हूं। होता है नहीं होता है। तो जो प्राप्त किया है वो सदा कायम नहीं है, वो परिवर्तनशील है। तो वो कैसा परिचय जो रोज बदलता हो, और हम वही परिचय दे रहे हैं। पूछो किसी से आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नाम बता देंगे, रूप बता देंगे, क्वालिफिकेशन बता देंगे, प्रोफेशन बता देंगे, अपना रेसिडेंस का एड्रेस बता देंगे। उससे परिचय दे रहे हैं जो एक दिन खत्म होने वाला है, जो आज है कल नहीं है। तो वो हमारा परिचय बेशक है, लेकिन भौतिक परिचय है, जो आज है कल नहीं रहेगा। तो हमारा हमारा आध्यात्मिक परिचय क्या, वो हमें मालूम हो तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करें। वो सत्य है, वो सदा कायम रहेगा, है ना। आत्मा आज है, कल भी थी और कल भी रहेगी, वो कायम है। उसको ही कहा हमें सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चल। ज्ञान तो दुनिया भर का है, लोग पीएचडी कर लेते हैं आज, पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां ले लेते हैं, ज्ञान तो बहुत है ना, फिर भी उसको कह रहे हैं मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल। तो कौन सा अज्ञान था? जीवन के दो अस्तित्वों में से आध्यात्मिक अस्तित्व का हमें अज्ञान है। उसको समझने के लिए हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे प्रभु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल। तो वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं, लेकिन शरीर के भीतर शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, दिव्य सितारा, आध्यात्मिक सत्ता, प्रकाश का पुंज, हीरो एक्टर हो। हीरो एक्टर, एक्टर की पहचान उसकी अपनी पहचान होती है ना। एक एक्टर फिल्म में कई रोल बजा सकता है। एक फिल्म में झाड़ू लगा रहा है, दूसरी फिल्म में बॉस बनकर बैठा है, तीसरी फिल्म में भिखारी का रोल प्ले कर रहा है। तो रोल अलग अलग कर रहा है, उसके रोल अलग अलग है, लेकिन वो रोल तीन अलग अलग प्ले करने वाला एक्टर तो एक ही है ना, उसकी फिक्स आइडेंटिटी है ना। ऐसे ही हमारी फिक्स आइडेंटिटी क्या है? मैं एक आत्मा हूं। और ये जो हम कह रहे थे मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, ये सब क्या थे? हमारे डिफरेंट डिफरेंट रोल। एक है एक्टर अर्थात कर्म करने वाला, और दूसरा है कर्म। हमने क्या किया? हम जो कर्म कर रहे हैं उसको अपनी पहचान बना दी। मैं दुकानदार हूँ, दुकानदार नहीं हूँ, दुकानदार का कर्म कर रहा हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टरी का काम कर रहा हूँ। माँ नहीं हूँ, माँ का काम कर रही हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ। हीरो एक्टर सदा ही स्वमान में जीता है, उसको हमेशा ये याद रहता है मैं हीरो पाठ धारी हूँ, कहानी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। उसको ये पता होता है, उसको ये पता होता है कि मेरे पास क्वालिटीज है, मेरे अपने प्रिंसिपल्स है, और मुझे इन प्रिंसिपल्स की रक्षा करते हुए जीवन जीना है। उसको ये पता होता है मेरी ही लाइफ में परिस्थितियां आएंगी, मेरी ही लाइफ में चुनौतियां खड़ी की जाएगी, विलेन मेरे से ही टक्कर लेने वाला है, किसी और साधारण एक्टर से नहीं लेने वाला है टक्कर, किससे लेने वाला है? हीरो एक्टर से। सब उसको पता होता है, लेकिन चूंकि उसको ये भी पता होता है कि मैं कौन हूँ, हीरो एक्टर हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी उसको पहले से पता होता है, और यही उसकी पहले की जानकारी, उसका सम्मान उसको क्या करता है? विपरीत परिस्थितियों में भी, चुनौतियों के समय भी अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स की रक्षा करने की ताकत देता है। और इसीलिए चुनौतियों के समय सहनशील बना रहता है। सहनशील का मतलब ही है जो मेरे प्रिंसिपल्स है उनकी रक्षा होती रहे, मेरे जो कोर वैल्यूज है उसकी बलि चढ़ा के मुझे चुनौतियों को फेस नहीं करना है, उनकी रक्षा करते हुए। अब कोर वैल्यूज क्या होते हैं हीरो एक्टर के? खुशी को कभी नहीं छोड़ना है, किसी को दुख नहीं देना है, हिम्मत नहीं हारना है, यही तो उसकी कोर वैल्यूज है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी, इसलिए आप देखोगे फिल्मों में भी कई बार ऐसे ही दिखाते, हीरो एक्टर को चाहे पहाड़ों से फेंक दिया जाए, चाहे अग्नि में झोंक दिया जाए, चाहे पानी में डुबा दिया जाए, लेकिन उसकी खुशी कभी नहीं कम होने वाली है। हम क्या कहते हैं, ये तो फिल्म है ना, ऐसे दिखाते हैं, रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है, बोलते नहीं बोलते ऐसा, लेकिन वो भी फिल्में ऐसी क्यों बनी? इंट्यूशन कहां से आ रही है ऐसी चीजों की? क्यों? क्योंकि रियल में वो इस हीरो की बात है, ये हीरो के पास वैल्यूज है, इस हीरो को पता है विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये स्मृतियां ही मुझ हीरो एक्टर को अपने कोर वैल्यूज की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो मैं हीरो एक्टर हूं, मेरी जो कोर वैल्यूज है, मेरा जो मूल स्वभाव है, जो हम पहले भी वर्णन करके आए, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं, ज्ञान, जिसको अगर फार्मूले के रूप में याद करना हो, KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, KP² गणित में पी ऊपर में 2 लिखो तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं ना, KP² लो हाई ब्लड प्रेशर माना LHBP। के स्टैंड फॉर नॉलेज, कौन सा नॉलेज? आध्यात्मिक, भौतिक तो बहुत है, के स्टैंड फॉर नॉलेज ज्ञान। फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्यूरिटी, स्वच्छता, पवित्रता, सच्चरित्रता, और सेकेंड पी फॉर पीस, शांति। अब LHBP, एल माना लव, कौन सा प्यार? दैहिक प्यार नहीं, दैहिक प्यार में तो आज कहेंगे आई लव यू और कल कहेंगे आई हेट यू, ये दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार, आत्मीयता। एच माना हैप्पीनेस, बी माना ब्लिस, ब्लिस क्या? हैप्पीनेस का एक्सट्रीम, और लास्ट में पावर, शक्ति। ये मेरी कोर वैल्यूज हैं। अब ये कोर वैल्यूज हैं, लोग कहते बहन जी कहने के तो आप कह दो कि ये मेरी कोर वैल्यूज हैं, पर मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत हारा हुआ हूं, अंदर में घृणा नफरत की अग्नि जल रही है, और आप कहते हो बहन जी अपने आप कहते हो, समझो अपने आप को, मैं आत्मा हूं, शांति मेरा मूल स्वभाव है, परंतु मुझे तो शांति कहीं नजर ही नहीं आती है, मुझे तो अपने अंदर क्या नजर आता है? गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, बदले की भावना आदि आदि, ये नजर आता है अंदर, मुझे वो तो नजर ही नहीं आता है आप जो कह रहे हैं। फिर मैं वो अभ्यास कैसे करूं, कैसे अपने आप को कहूं मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, कैसे कहूं मैं आत्मा हूं, मेरा मूल स्वभाव प्रेम है, मेरे अंदर तो घृणा की अग्नि जल रही है, क्या अपने आप के साथ मैं चीटिंग करूं? लोग ऐसा सवाल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ लें, हम क्या कह रहे हैं, ये कोर वैल्यूज आत्मा का मूल स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? मूल स्वभाव, असली स्वभाव। उदाहरण के लिए, इस ग्लास में पानी है, ये इस समय पानी गर्म है। पानी का स्वभाव क्या होता है? शीतलता होता है। इस समय ये पानी गर्म है, लेकिन इस गर्म पानी को हाथ में पकड़कर क्या मैं ये कह सकती हूँ पानी का स्वभाव शीतलता है? ये कहना राइट होगा या रॉन्ग होगा? ये कहना राइट होगा या रॉन्ग होगा? हाँ, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ये पानी शीतल है, हम क्या कह रहे हैं? इस पानी का स्वभाव शीतलता है, इसका मतलब पानी अपने आप में शीतल होता है, अभी गर्म है, इसका मतलब ये गर्मी के संपर्क में आकर इसने गर्मी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और इसलिए शीतलता का एहसास छुप गया। अभी एहसास किसका है? गर्मी का है, लेकिन गर्मी इसको देना बंद कर दो, थोड़े समय के बाद अपने आप शीतल हो जाएगा। अर्थात मूल स्वभाव को ढाका जा सकता है, छुपाया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। और एक दूसरा उदाहरण ले ले, सूर्य का मूल स्वभाव क्या है? गर्मी देना, प्रकाश देना। अर्थात अगर सूर्य गर्मी न दे, प्रकाश न दे, तो वो सूर्य ही नहीं है। अर्थात गर्मी और प्रकाश सूर्य से कोई छीन नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि सूर्य के गर्मी से सागर का पानी बाष्प बनकर बादल का रूप लेकर सूर्य की गर्मी और प्रकाश जिस मार्ग से आ रहे थे उस मार्ग में जाके खड़े हो जाएं, और अब मुझे उसके प्रकाश और गर्मी का वो एहसास जो पहले होता था अब नहीं हो। ये हो सकता है, परंतु फिर भी सूर्य तो अब भी क्या कर रहा है? गर्मी और प्रकाश दे ही रहा है, वो मेरे तक नहीं पहुंच रहा, उसका कारण अलग है, पर अब भी वो क्या कर रहा है? उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जब हम कह रहे हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, मतलब वो अभी भी बरकरार है। सिर्फ हुआ क्या है, जैसे सूर्य की ही गर्मी से पानी भाप बना था, गर्मी न होती तो पानी भाप बनता ही नहीं, और भाप बनता ही नहीं तो बादल बनकर उसके रास्ते में बाधा खड़ी करता ही नहीं। तो बेशक सूर्य की गर्मी ही उसका कारण बनी, ठीक ऐसे ही हम आत्माएं शरीर में है तो शरीर चैतन्य बनता है, तो आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मुख बोलते हैं, फिर आंखों से, कानों से, मुख से कुछ कुछ गलत कर लेते हैं और वो बादल जाके आत्मा के मूल स्वभाव जो बाहर रेडिएट हो रहे थे उस रास्ते में जाके हमने गलत गलत बना ली ना अपनी आइडेंटिटी। मैं कौन हूँ? इंजीनियर हूँ। कौन हूँ? ऊंचे तबके में रहने वाला हूँ। बहुत पॉश कॉलोनी में रहते हम लोग, बहुत अच्छे एरिया में रहते हम लोग, बहुत नामी ग्रामी हूँ मैं, किसी से भी आके पूछ लेना हमारे उधर फलाना कहाँ रहता है, बिल्कुल बता देंगे हमारा इतना नाम है। ये सब हमने बना बादल खड़े कर दिए, तो आत्मा की जो ओरिजिनल प्रकाश और शांति प्रेम जो वाइब्रेट होके बाहर आ रही थी उसके रास्ते में ये बादल खड़े हो गए, उसके रास्ते में बादल खड़े हो गए, और इसलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हम कहते हैं बहन जी मैं इतना अशांत हूँ, और मैं कैसे कहूँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि ज्ञान नहीं ना। एक बच्चा भी कह सकता है मम्मा कुछ प्रकाश तो आ ही नहीं रहा है, प्रकाश गर्मी तो आई नहीं, और आपके तो सूरज गर्मी देता है प्रकाश देता है, कहेगा ना, क्योंकि बेसमझ है। लेकिन चूंकि हमें समझ है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे को। ठीक ऐसे ही मानव आत्माओं की ताकत नहीं इन सूक्ष्म बातों को समझ पाने की, तत्काल उस परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है और इन सब बातों से हमें अवगत कराना होता है। तो परमात्मा अवतरित होकर ये कहते हैं, बच्चों तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, चैतन्य शक्ति हो, तुम्हारा मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, शक्ति है, समझ है। अब क्या करो, अपना मन बुद्धि वहां केंद्रित करके उसको अनुभव करो। थोड़ा सा और खुलासा कर दूं, शांति अपने आप में क्या है, प्रेम अपने आप में क्या है, खुशी अपने आप में क्या है, शक्ति अपने आप में क्या है, आनंद अपने आप में क्या है, समझ अपने आप में क्या है, ये सब फीलिंग्स है। पवित्रता अपने आप में क्या है, फीलिंग्स। कहीं आप जाओ सब कुछ साफ सुथरा है, एक फीलिंग आती है ना, ओ कितना सब कुछ साफ सुथरा है। कहीं जाओ पूरी गंदगी पड़ी है, फीलिंग आती है ना, कितना गंदा है, फीलिंग है ना वो। तो ये तो भौतिक थी, ऐसे ही आंतरिक सूक्ष्म पवित्रता क्या है, ये व्यक्ति कैसे बोलता है, कभी कुछ, इसमें तो सत्य ही नहीं है, कथनी कुछ करनी कुछ, बोलते नहीं बोलते, ये व्यक्ति जो बोलेगा वही करेगा, बिल्कुल साफ दिल है, फीलिंग्स चेंज हो रही ना। तो क्या है ये फीलिंग्स है, शक्ति भी क्या है, फीलिंग। आप देखो कभी आप कोई म्यूजिक प्ले करो, तो म्यूजिक जैसे ही प्ले करेंगे शांति की फीलिंग आएगी, कोई म्यूजिक प्ले करेंगे शक्ति का एहसास होगा, कोई म्यूजिक प्ले करेंगे पैर थिरकने आरंभ हो जाएंगे। अब वो म्यूजिक क्या थी, म्यूजिक क्या थी, एक फाइल है बनी हुई जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट ही हो रही है ना, पर वाइब्रेशन का तरीका अलग अलग है। जिस वाइब्रेशन से, जिस फाइल से, जिस म्यूजिक से शांति की फीलिंग आ रही, उसके वाइब्रेट होने का तरीका अपना है। जिस म्यूजिक को प्ले करके खुशी आ रही, उसके वाइब्रेट होने का तरीका अलग है। इवन ज्ञान भी एक वाइब्रेशन है। उदाहरण के लिए अब हम बोल रहे हैं, सपोज रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, उसमें जो रिकॉर्डिंग होगा क्या होगा, वाइब्रेशन ही तो होगा, और जब उस फाइल को प्ले करेंगे तो आवाज आएगी, वही तो होगा ना। तो क्या है ये सब, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का एक डिफरेंट पैटर्न है, तरीका है। तो हम एनर्जी को, आत्मा ऊर्जा है कहा ना, आत्मा एक शक्ति है कहा ना, तो जैसे पानी का एक स्वभाव तो हमने कहा शीतलता, उससे आत्मा के मूल स्वभाव को हमने अच्छे से समझ लिया। अब पानी का दूसरा स्वभाव क्या है, बहते रहना। इस आत्मा ऊर्जा का स्वभाव है बहते रहना, और बहते रहना माना वाइब्रेट होते रहना। तो ये डिफरेंट पैटर्न जो है इस आत्मा एनर्जी का वाइब्रेट होने का, वो ही डिफरेंट फीलिंग दे रहा है कि शांति की फीलिंग, प्रेम की फीलिंग, आनंद की फीलिंग। अब वो जो पैटर्न बना हुआ है, जिसे फाइल बनी हुई है, सपोज कि म्यूजिक बजती है और शांति का अनुभव होता है, लेकिन अगर जैसे टेप रिकॉर्डर हो और टेप रिकॉर्डर में बैटरी रिचार्जेबल डली हुई हो और मैंने प्ले किया, बड़ी शांति का एहसास कराने वाली म्यूजिक बज रही है या बड़ा ही पसंदीदा सुमधुर गीत बज रहा है, लेकिन बैटरी रिचार्जेबल है, मतलब बैटरी पर चल रहा है, मैं प्ले स्टॉप का खेल कंटिन्यूस हो रहा है, आखिर कर भी बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही, जब डिस्चार्ज के कगार पर आ जाएगी तब वही म्यूजिक वही आवाज कैसा हो जाएगा। जैसे कोई पिया हुआ आदमी बड़बड़ कर रहा हो ऐसा हो जाएगा ना, करंट सप्लाई नहीं मिला और इसलिए उसका क्या हो गया, वाइब्रेट होने का तरीका क्या हो गया वाइब्रेट। यही तो होता है, देखो हार्ट अपने रीति से स्पंदन करता है, हार्ट बीट होता है, लेकिन अगर कभी गुस्सा आ जाए तो उसकी हार्ट बीट चलता है, कभी डिप्रेशन में आ जाओ तो क्या हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेट होने का तरीका बदल जाता है और उससे ही डिफरेंट फीलिंग्स का निर्माण होता है। और ये वाइब्रेट होने का तरीका बदलने का कारण उसको प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उसको भी पावर प्रॉपर सप्लाई देनी है। तो प्रॉपर सप्लाई कैसे देंगे उसको, तो कहां, आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन से सोचते हैं ना, बुद्धि से निर्णय लेते हैं ना, कल भी देखा आते ही मैं कौन हूं देखा, आते ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ, उस सब में मैं कौन हूं का बहुत अच्छा परिचय मिल गया है, लेकिन हम उसको सिर्फ क्या कर रहे, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। तो मन विचार करता है, लेकिन ये विचार की क्वालिटी आज क्या हो गई है, विचार की क्वालिटी क्या हो गई है, नकारात्मक हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, बैटरी डिस्चार्ज है ना, बैटरी डिस्चार्ज होने से ही क्वालिटी बदल गई थी ना। तो आज हमारे मन को राजयोग क्या सिखाता है, लोग फिर मन को ही दोष दे देते हैं कि मन ऐसा है वैसा है, नहीं मन बहुत सुंदर है, पर मन को एक दिशा की जरूरत है। इसीलिए तो कहा जाता है सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। तो मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन का दमन करने की जरूरत नहीं है, मन को शून्य बनाने की जरूरत नहीं है, मन को राइट दिशा प्रदान करने की जरूरत है। जब मन को राइट दिशा मिलती है, ये मन जिसको हम इतने निगेटिव टाइटल्स दे रहे हैं, इस मन को हम बहुत सुंदर टाइटल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि एनर्जी को टैप करना होता है ना। आप सूर्य की एनर्जी को टैप करके हम सोलर प्रोजेक्ट्स कितने बना लिए, विंड एनर्जी को टैप करके कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम तैयार कर लेते हैं, एनर्जी को ट्रैप करने की जरूरत है, अदरवाइज वो गलत दिशा में जाकर संहार कर सकती है, लेकिन अगर सही दिशा दे दी तो सृजन कर लेगी। तो आज हमारा मन क्या कर रहा है, निगेटिविटी माना ही संहार कर रहा है, क्योंकि देखो एक बैटरी जब डिस्चार्ज होती है ना, जब फोन पे हम बात कर रहे हो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसके साइन क्या है, अभी मैंने देखा नहीं है उसको जो दिखती है, बात कर रही हूँ फिर भी कैसे पता चले कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, गर्म होना शुरू, गर्म का एहसास होगा। दूसरा, चूंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है सिग्नल वीक होगा, पकड़ में नहीं आएगा ना, सिग्नल वीक वॉल्यूम डाउन, और ऐसे केस में मैं बात किए जा रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ सामने वाला नहीं समझ रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है मैं नहीं समझ रही हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और थोड़ी देर में बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज, कनेक्शन कट, यही होता है। आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार जाते हैं, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या आ जाती है, छोटी छोटी बातों में घृणा आ जाती है, छोटी छोटी बातों में बदला लेने की भावना जागृत हो जाती है। ये सब क्या संकेत है, छोटी छोटी बातों में हम गर्म हो जाते हैं, और जब गर्म हो जाते हैं ना, तो जैसे का मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समझ, और इसीलिए देखो आज हर दो व्यक्ति के बीच में ये समस्या है, मैं जो कह रही हूं आप समझते क्यों नहीं हो, आप मेरे भाव को समझो ना, आप क्यों नहीं समझते हो, मैं जो सोच, मैं जो मेरा भाव आप उसको कैच ही नहीं करो, फिर सामने वाला भी उसको यही बोलेगा, मैं जो बोल रही आप क्यों नहीं समझ रहे हो, दोनों का यही चल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग। और जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग के पहले जो बेटर अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके कारण हमारी एक दूसरे के प्रति गुड विशेष थी, एक दूसरे के प्रति प्योर फीलिंग्स थी, लेकिन जैसे ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई, हमारी गुड विशेष, हमारी प्योर फीलिंग्स ने भी डायरेक्शन चेंज कर दी चेंज। जो नेगेटिविटी चल रही वही यही तो चल रही है, और क्या चल रही है, यही चल रही है ना। और फिर क्योंकि इधर से नेगेटिव एनर्जी जा रही है, उधर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव रिपल्शन हो रहा है, दूरियां बढ़ रही है, दूरियां बढ़ के रिलेशन खत्म, यही हो रहा है। फिर कहते हैं जीवन हमको मिला क्यों था, इससे अच्छा तो हम जीते ही नहीं ना, यही होता है। फिर कहते हैं भगवान हमें उठा लो इस दुनिया से, डिप्रेशन, यही तो डिप्रेशन है और क्या है। तो तब कहा कि बेशक बैटरी यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगी और उसके प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें सतर्क रहना है कि बैटरी को हम चार्ज कर ले, बस यही करना है। कि हमें क्या करना है, सारे संकेत मिल गए हैं हमें बैटरी डिस्चार्ज के, अब हमें क्या करना है, इसको चार्जिंग करना है, माना ही मन को दिशा सही वाली दे देना है। अभी तक क्या था कि अंदर तो सिर्फ घृणा दिख रही थी ना, नफरत दिख रही थी, टेंशन दिख रहा था, मूल स्वभाव तो दिख रहा ही नहीं था ना, बादलों के पार है ना। लेकिन परमात्मा ने समझ दे दी, अब मुझे अपने मन बुद्धि को वहां फोकस करना है। तो जैसे ही मैं अपने आप से कहूंगी मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, प्रकाश का पुंज हूं, शांत स्वरूप हूं, तो एनर्जी का वाइब्रेशन इस प्रकार से होगा जिसकी फीलिंग शांति होगी। ये थॉट देना अर्थात उस फाइल को प्ले करना, तो जो फाइल जिस वाली होगी वही प्ले होगा ना। तो जैसे मैं कहूंगी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एनर्जी उस रीति से वाइब्रेट होगी शांति का एहसास। जैसे ही मैं कहूंगी मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, एनर्जी उस रीति से वाइब्रेट होगी जिससे शक्ति का एहसास होगा। तो ये सब भीतर मिलना है, हीरो के पास मौजूद है, लेकिन हीरो इसे बेखबर है, और इसलिए कहा डिस्कवरिंग द हीरो विदिन। आज जिसको पाने के लिए बाह्य जगत में मेहनत कर रहे थे उससे वो नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा अपने भीतर। तो मन को उस और फोकस कीजिए। तो तब कहा मन तो बहुत विचार देता है, मन को आदत पड़ गई है व्यर्थ चिंतन करने की, नकारात्मक सोचने की, पर चिंतन करने की, पर दर्शन करने की, अब इसको हम सही दिशा दे ताकि मन स्वचिंतन करे, श्रेष्ठ चिंतन करे, शुभ चिंतन करे, परमात्म चिंतन करे। तब कहा बुद्धि की जरूरत, कि बुद्धि पहले समझे ना, मन तो बहुत विचार देगा लेकिन बुद्धि सिलेक्शन करेगी कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। जैसे कल भी शीलू दीदी बता रहे थे सोच समझ कर करो, तो होना चाहिए था पहले सोचना फिर समझना फिर करना, लेकिन हमारी उल्टी साइकिल चल रही है, पहले कर लेते हैं फिर समझते हैं फिर सोचने बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी क्या हो गई है, कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि बुद्धि में भी दो प्रकार का ज्ञान की जरूरत थी, एक भौतिक दुनिया का ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। बुद्धि उसे एकदम रिक्त हो गई है, तो बुद्धि बार बार उस तरफ ही जाती है। तो बाह्य जगत के आधार से तो हमने बहुत सारे प्राउड क्रिएट कर दिए हैं, अभिमान क्रिएट कर दिए हैं, तो उसी के वश हो जाते हैं और उसके वश होकर कार्य संपन्न नहीं होते, तो लोभ के वश, गुस्से के वश, मोह के वश सब कुछ कर बैठते हैं। तब कहा बुद्धि, इसलिए कहते हैं बुद्धि के लिए क्या कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, ये सारा जग तेरी संतान, इस धरती के बसने वाले सब तेरी गोद के पाले हैं, कोई नीच ना कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जातियों के नस्लों के बंटवारे झूठ कहां ये तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का कोई तोल नहीं है, कर्म ही है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। है दुनिया का गीत लेकिन कितना सार भरा है इसमें, कितना सार भरा है, लेकिन अंदर झांकने का प्रयास अभ्यास नहीं है तो बातें समझ में नहीं आती। लेकिन इस गीत में देखो सब कुछ समाया है कि कोई नीच नहीं, कोई महान नहीं, कोई जाति नस्लों के बंटवारे नहीं, हम सब एक है। कब? जब हम सारे को आत्मा रूप में देखेंगे, और आत्मा रूप में हरेक का मूल स्वभाव एक जैसा है। तो आज के इस राजयोग सत्र का मूल अभ्यास, हम आत्मा है, आत्मा समझकर जीवन जीना है, हरेक को आत्म दृष्टि से देखना है। वर्तमान में मेरा स्वभाव चाहे कुछ भी हो, जिसको मैं कहती हूँ गुस्सैल हूँ, डरपोक हूँ, कमजोर हूँ, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, अब वो दृष्टि बदल दे। वो है लेकिन वो कहा ना, पानी ने गर्मी के संपर्क में आकर उस गर्मी धारण कर ली, तो ये हमने देह की स्मृति में आकर अपने आप को देह समझकर जो हासिल किया उसके आधार से ये तैयार कर लिया स्वभाव। लेकिन ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, ये अर्जित है। ओरिजिनल माना बनाया नहीं गया, बना बनाया है, वो नष्ट नहीं होगा। अर्जित वाला नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? अब वो बोलना बंद करो। जैसे पानी को भी गर्मी कैसे उसकी निकलेगी? गर्मी देना बंद करो। अब बोलना बंद करो कि मैं गुस्से वाला हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं टेंस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा, हीरो, एक्टर, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जितना आप ये बोलेंगे उतना मूल स्वभाव के करीब जाएंगे, उतना वो फील करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, आपकी मनस्थिति अच्छी होगी, उसका असर आपके तन पर आएगा, तन की तंदुरुस्ती आएगी, उसका असर आपस की एनर्जी एक्सचेंज में आएगा, रिश्ते इम्प्रूव होंगे, उसका असर चारों ओर के वातावरण में आएगा, वातावरण स्पिरिचुअली चार्ज्ड हो जाएगा। सिर्फ किससे? एक परिवर्तन से, कि अपने आप को देह नहीं आत्मा समझने से। कितने फायदे? तो मन, बुद्धि, संस्कार, मन ने विचार बहुत वैरायटी प्रदान किए, बुद्धि ने सिलेक्शन किया, फिर कर्म किया, कर्म बार बार रिपीट किया, संस्कार के रूप में आत्मा में छप गया, अब वो संस्कार मेरे से कार्य कराती है। तभी कहते हैं बहन जी गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, पता ही नहीं कैसे आ जाता है, संस्कार करा देता है। तो अभी हमें अच्छी बातों के संस्कार तैयार करने, मेरा जो मूल स्वभाव है वो संस्कार तैयार करने हैं। कुछ दिन मेहनत लगेगी, क्योंकि मन कुछ बात आएगी आदत के अनुसार गुस्सा करने को तैयार होगा। नहीं नहीं, हमारे पास शांति की भी फाइल है। लेट मी वाइब्रेट, लेट मी प्ले दैट फाइल। कौन हूँ मैं? मैं शांत स्वरूप, आत्मा हूँ। रोज रोज का अभ्यास संस्कार बना देगा, एक बार संस्कार बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा कैसे शांत में रहने लग गए। तो मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा एक चैतन्य शक्ति, मन बुद्धि ही आत्मा की चैतन्यता को दर्शाते हैं। और लास्ट बात, हीरो एक्टर चाहे कोई भी एक्टर हो, रंगमंच पर पार्ट प्ले करता है, इसलिए रंगमंच पर वस्त्र धारण करता है। रंगमंच उसका घर नहीं होता है, घर उसका अलग होता है, वहाँ पे रंगमंच वाले ड्रेस नहीं पहनता है। तो हम आत्मा अगर हीरो एक्टर है तो ये दुनिया हमारे लिए रंगमंच है, ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है, जिसको पहनकर हम वैरायटी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारा घर इस पांच तत्वों की दुनिया से पार परम धाम है, जिसको ही हम सब याद करते हैं, ऊपर भगवान का घर है, वहां से हम आए हैं। तो वो दुनिया जो नीले आसमान के ऊपर एक सुनहरे लाल रंग का आसमान, वो आसमान और वो आसमान के बीच में खुला स्पेस, जहाँ पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, वहाँ आत्मा में सिर्फ ज्योति बिंदु के रूप में, सितारे के रूप में लटक रही हूँ, जैसे इस आसमान में सितारे लटक रहे होते हैं। तो वो मेरा घर है, वहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है। वहाँ शरीर नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, सुख दुख नहीं है, हानि लाभ नहीं है, मुक्ति धाम है वो, शांति धाम है वो, पर लोक है, इस दुनिया से परे है। उसी को हम सब याद करते आए हैं। क्यों याद करते आए हैं? कि वहां से आए हैं, एक दिन वहां पर जाना है, अर्थात हमें इस दुनिया में इस स्मृति से जीना है कि हम तो चार दिन के मेहमान। जब मेहमान की स्मृति रहती है ना, महान कर्तव्य करते हैं, किसी के घर जाओ मेहमान बनकर, उनकी आपस में दो जन की चिक चिक चल रही होगी, अपने को नहीं जाना बीच में, अपने को नहीं जाना बीच में, करते नहीं करते हैं। तो मेहमान की स्मृति से जियो कि हम यहाँ रंगमंच पर आए हैं, रंगमंच पर अपनी जो क्वालिटी से कोर वैल्यू से उसको मुझे एक्सप्रेस करना, मेरा यही एक एम है। उस भगवान के घर से आए हैं, भगवान की संतान है, जो भगवान के गुण है वही मेरे गुण है, तो अपने गुणों के द्वारा उस भगवान का नाम रोशन करना है। इतने सुंदर सुंदर लक्ष्य, इतने सुंदर सुंदर, जब समान हीरो एक्टर को होंगे ना, हीरो एक्टर अपनी एक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का मन बना के रखेगा और उसको ही दृढ़ता से करेगा, और जीवन सचमुच खुशनुमा आनंद से भरा बन जाएगा। वही बातें होंगी, वही परिस्थितियां होंगी, हमारा नजरिया अलग हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम प्रेम से भर जाएंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। ये है फायदा डिस्कवरिंग द हीरो विद इन। ठीक है, तो चलिए दो मिनट के लिए अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि ये दिन भर में अपने आप को, मन दूसरी दिशा में जाएगा, मन को इस दिशा में खींच करके लाना है। तो अलर्ट होके बैठे, कमर सीधी रखकर बैठे, हाथ में जो कुछ भी उसको साइड में रख लें, और अब अपना मन बुद्धि केंद्रित करें इस शरीर के भीतर, भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्म ज्योति की तरफ देखें, मस्तक के बीचों बीच भीतर में आत्मा ज्योति जगमगा रही है। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक प्रकाश का पुंज हूँ। आज दिन तक मैंने जिस शरीर के भीतर विराजमान हूँ उसको मैंने मैं समझ लिया था, और उस शरीर के द्वारा इस दुनिया में जो जो हासिल कर दी गई उससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन आज सत्य ज्ञान से स्पष्ट हो गया है, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से भिन्न किंतु शरीर के भीतर जगमगाती हुई एक आत्मा ज्योति हूँ। देखे आत्म ज्योति की किरणों को चारों ओर फैलते हुए। मैं मन बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति हूँ। मेरा मूल स्वभाव शांति प्रेम खुशी आनंद है। आज दिन तक मैं इसको बाहर ढूंढती रही लेकिन नहीं, ये तो मेरा मूल स्वभाव है। सिर्फ अपने मूल स्वभाव को चिंतन में लाकर उसको बार बार रिवाइज करते हुए, रिपीट करते हुए रियलाइज करना है। कहे अपने आप से, मैं आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। फील करें शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरी निजी संपत्ति है। मैं प्रेम से भरपूर हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। शक्ति के वाइब्रेशन फील करें और चारों ओर फैलाएं। ये सब मुझ में निहित है लेकिन इसकी अज्ञानता होने के कारण मैं इसको फील करने से वंचित रह गई। स्वयं की अज्ञानता होने के कारण स्वयं को देह मानकर मैंने जो गलत आइडेंटिटी बना ली उसके कारण मेरे मूल स्वभाव का विपरीत फीलिंग, उसके बादल मेरे अंदर तैयार हो गए और मैं पूर्णतः भूल गई अपने मूल स्वभाव को। लेकिन मेरे भाग्य के क्या कहने, परमात्मा अवतरण भूमि पर आकर सत्य का बोध हुआ और इस सत्य को जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप प्रदान करते हुए मुझे इन अपने असली स्वभाव को स्वयं भी फील करना है और चारों ओर वाइब्रेट करना है। ये मेरा घर नहीं है, ये सृष्टि, ये रंगमंच है। मैं घर से आई इसीलिए थी अपने मूल स्वभाव को रेडिएट करते हुए, वाइब्रेट करते हुए इनका अनुभव करने पर यात्रा करते करते थोड़ी सी भूल हो गई और यात्रा का स्वरूप बदल गया, लेकिन अब वापस सत्य ज्ञान के बल पर यात्रा को सही दिशा मिल गई है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। यही चिंतन मुझे खुशनुमा बनाएगा, मेरी जिंदगी को आनंद और खुशियों से भर देगा। ओम शांति शांति शांति।
वक्त तो यूं गुजर जाएगा, यह कारवां भी यूं ही अनवरत चलता रहेगा। क्यों हम सही दिशा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं? लक्ष्य सुंदर और प्रयास अथक, पर कैसे हम अक्सर विपरीत दिशा में चले जाते हैं, बाह्य आकर्षणों के जालों में उलझे। यह जोड़ने की जुगत में आज इंसान जैसे लगा रहता है, पर इस बाह्य आकर्षण के साथ किस तरह हम अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। इंदिरा बहन जी ने आज स्वयं के अंतर जगत के हीरो की खोज, पहचान और परिचय की विस्तार से विवेचना की है, और शिव बाबा की उत्प्रेरणा से दिली जी ने हमें सहज पहचान दी और सुगम रास्ता बताया। इन्होंने हमें बताया कि हमारी जो आत्मा की कोर वैल्यूज हैं और किस तरह हमें अपने मन को एक राइट दिशा देने की जरूरत है, और आज एक सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है। इन बातों के लिए हम दिली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारा डायरेक्शन इसी तरह हमको एक सही विचार देते रहें और हमारी यात्रा यूं ही बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच।